بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا مترو، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शुक्रवार है, आबान की 27, नवंबर की 18 और रबीउल सानी की 23 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे, उसके पश्चात होगा आपका मन पसंद कार्यक्रम पत्र संसार, और सभा का अंतिम और साप्ताहिक कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। तेहरान की केंद्रीय नमाज जुमा के अस्थायी इमाम ने कहा है कि लोगों का खून बहाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। रूस ने ईरान, चीन और तुर्की से सहयोग को महत्वपूर्ण बताया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद मानवता पर हमला है। पाकिस्तान में 12 बच्चों सहित 20 लोगों की मौत हो गई। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। तेहरान की केंद्रीय नमाज जुमा के अस्थायी इमाम ने कहा है कि जिन लोगों को दूसरों का खून बहाने से आनंद प्राप्त होता है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आज तेहरान की केंद्रीय नमाज जुमा हुज्जतुल इस्लाम अहमद खातमी की इमामत में अदा की गई। उन्होंने नमाज जुमा के खुतबों में कहा कि आतंकवाद हालिया उपद्रव की उपज है और हम किसी का खून बहाए जाने के पक्ष में नहीं हैं, परंतु जिन लोगों को दूसरे का खून बहाने से आनंद मिलता है, उनके साथ कड़ा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने तक्वे अर्थात ईश्वरीय भय का महत्व बयान करते हुए कहा कि सामूहिक तौर पर तक्वा इस बात का कारण बनता है कि लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और महंगाई और सामाजिक समस्याओं के समय अपने धार्मिक भाई बहनों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि तक्वा एक व्यक्तिगत चीज है, जबकि कुरान तक्वे को एक व्यापक अर्थ में देखता है। इसी प्रकार तेहरान की केंद्रीय नमाज जुमा के अस्थायी इमाम ने कहा कि राजनीतिक स्तर पर तकवे का अर्थ व्यवस्था को मजबूत करना है और महान हस्तियों व धर्मगुरुओं के अनुसार इस्लामी व्यवस्था को कमजोर करना और दूसरे पर आरोप लगाना हराम है। जब कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है तो उसका ईमान खत्म हो जाता है। तो उन्होंने सवाल किया कि जब एक व्यक्ति का दूसरे पर आरोप लगाना हराम है तो क्या एक व्यवस्था पर आरोप लगाना हराम नहीं है? जो یہ کہتا ہے کہ اسلامی ویوستھا میں بھرشٹاچار ہے تو یہ جھوٹ اور آروپ ہے. اسی پرکار انہوں نے کہا کہ اسلامی ویوستھا بھرشٹاچار کے ورودھی ہے اور بھرشٹاچاریوں پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے یا شیگر ہی چلایا جائے گا. یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. تہران نے انتراشٹریہ پرمانو ارجا ایجنسی آئی اے ای اے کی کارکاری بورڈ کی بیٹھک میں ایران کے خلاف امریکہ اور تین یورپی دیشوں دوارا پارت پرستاؤ کو خارج کر دیا. پراپت رپورٹ کے انوسار اسلامی گنراج ایران نے کہا کہ انتراشٹریہ پرمانو ارجا ایجنسی میں تہران ورودھی پرستاؤ کو لانے والے دیشوں نے ایران میں دنگے بھڑکا کر تہران پر دباؤ بنانے کی سازش رچی تھی, لیکن ان کے ہاتھ لگی ناکامی سے وہ بوکھلا گئے اور اس کے بدلے میں وہ آئی اے اے میں ایران ورودھی پرستاؤ لے آئے. بتا دیں کہ گرووار کو 17 نومبر کو آئی اے اے کے کارکاری بورڈ نے امریکہ اور تین پشمی دیشوں دوارا لائے گئے پرستاؤ کو پارت کر دیا, جس میں ایران پر انتراشٹریہ پرمانو ارجا ایجنسی کے ساتھ آوشک سہیوگ نہ کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے. ایران کے سشستر بلوں کے کمانڈر جنرل ایران کے سشستر بلوں کے جنرل کمانڈ کے صلاح کار نے بل دے کر کہا کہ دشمن نہ کیول اسلامی گنراج کو نہیں چاہتا بلکہ وہ ایران کو ہی نہیں چاہتا ہے. پراپت رپورٹ کے انوسار ایران میں کرد لڑکی مہسا امینی کی موت کے بہانے ہوئے دنگوں میں آتنکوادیوں کے سمرتھک چینل ایران انٹرنیشنل نیٹورک نے افواہ اور جھوٹ پھیلانے کے علاوہ لگاتار الگاوادی عرب اور بلوچ نیتاؤں کو اپنا منچ پردان کیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنگوں کے شروعاتی دنوں میں اس چینل نے 20 الگاوادی نیتاؤں کے 50 انٹرویو لیے ہیں. ساتھ ہی اس بات میں بھی کوئی سندیہ نہیں ہے کہ بی بی سی بھی ایران میں الگاواد ہنسا اور آتنکوادی کاروائیوں کو بڑھاوا دینے میں پیچھے نہیں رہا ہے. ایران کے سشست بلوں کے جنرل کمان کے صلاح کار بریگیڈیئر جنرل امیر ہاتھوی نے اس بارے میں کہا کہ دشمن کا لکش دیش کے آنترک وشیوں کو لے کر ہنسا بھڑکانا اور اس میں الجھانا ہے, تاکہ ہم انتراشٹریہ چھیتر میں بھومکا نبھانے میں سکشم نہ رہ سکیں. روس کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ ایران روس ترکی اور چین تھا کیسپین ساگر کے تٹوتی دیشوں سے سہیوگ مہتوپورن ہے اور یہ دیش ایک دھرویا ویوستھا بنائے جانے کی اور یہ دیش بہ ادھرویا ویوستھا بنائے جانے کے اچھک ہیں. روسی ودیش منتری سرگئی لاوروف نے آج شکروار کو تہران بیجنگ انکارا نئی دلی اور دوسرے دیشوں کے ساتھ سہیوگ پر بل دیا. لاوروف نے کہا کہ ہم بہ دھروی ویوستھا بنائے جانے کے پریاس میں ہیں اور سبھی دیشوں کو چاہیے کہ وہ اس دشا میں پریاس کریں. انہوں نے کہا کہ روس برکس گروپ کے ساتھ سمبندھ وستار کو مہتو دیتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایران ترکی اور کیسپین ساگر کے تٹوتی دیشوں کے ساتھ سہیوگ مہتوپورن ہے. اسی پرکار روسی ودیش منتری نے ایران اور ترکی کے ساتھ سہیوگ کو مضبوط بنائے جانے پر بل دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھارت اور چین کے ساتھ بھی ادھک سمجھوتوں پر ہستاکشر کے اچھک ہیں. یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. روس کی راشٹریہ سرکشا پریشد کے سچیو نے کیو کو چیتاونی دیتی ہے, کہا ہے کہ واشنگٹن سدیو اپنے گھٹکوں کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور یوکرین کے ساتھ بھی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. سماچار ایجنسی تسنیم کی رپورٹ کے انوسار دیمیتری میدویدیف نے یوکرین کو چیتاونی دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ میں مدھیاوتی چناؤ کے بعد پرتندھی سبھا کی ادھکانش سیٹوں پر ریپبلکن کا قبضہ ہو گیا اور امریکہ جو یوکرین کو سمرتھن دے رہا تھا اور دے رہا ہے اس کے سماپن کی گھنٹی بج چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ریپبلکنوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو یوکرین کی سہایتا کر رہا ہے وہ اس وشے کی سمیچھا کریں گے. گیات رہے کہ امریکہ یوکرین کی جو آرتھک مدد کر رہا ہے وہ ایک جٹل وشے بن چکا ہے اور کانگریس کے سانسدوں نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی سمیچھا کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے یوکرین کے لیے جو پیسہ بھیجا ہے وہ کہاں گیا. دلی میں آج سے شروع ہو رہی دو دیوسی نو منی نو ٹیرر فنڈنگ گلوبل کانفرنس میں دنیا بھر سے 72 پرمکھ دیش حصہ لے رہے ہیں. پراپت سماچاروں کے انوسار 15 ملٹی نیشنل سموہ اور این جی او بھی اس سمیلن میں شامل ہو رہے ہیں۔ بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے اس سمیلن کا ادگھاٹن کیا۔ اس سمیلن میں آتنکی فنڈنگ پر لگام لگانے کے اپایوں پر چرچا ہوگی۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کانفرنس میں کہا کہ دشکوں سے الگ الگ ناموں اور روپوں میں آتنکواد نے بھارت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ہزاروں بہمولیہ زندگیاں کا بلیدان دیا ہے، لیکن ہم نے آتنکواد کا ویرتاپوروک مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا دوارا آتنکواد کو گمبھیرتا سے لینے سے بہت پہلے ہی بھارت نے اس کی بھیاوہتا کا سامنا کیا تھا۔ تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آتنکواد کو جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینک دیتے۔ انہوں نے کہا کہ آتنکواد مانوتا، سوتنترتا اور سبھیتا پر حملہ ہے۔ پاکستان کے باڑھ پربھاوت سندھ پرانت میں ایک وین کے پانی سے بھرے گڈھے میں گر جانے سے 12 بچوں سہت کم سے کم 20 لوگوں کی موت ہو گئی۔ گھٹنا گروار کو اس سمے ہوئی جب مہیلاؤں اور بچوں سہت شردھالوؤں کو لے کر سندھ پرانت میں خیرپور سے سہوان شریف کی اور جا رہی یاتری وین خیرپور کے پاس سندھو راج مارگ پر باڑھ کے پانی کے لیے بنائے گئے گڈھے میں گر گئی۔ دنیا ٹی وی نے بتایا کہ 12 بچوں سہت 20 شردھالوؤں کی موت ہو گئی اور کئی انیہ گھائل ہو گئے۔ اور انت میں سماچار کی، غزہ پٹی کے اتر میں ایک گھر میں بھیشن آگ لگنے سے 9 بچوں سہت کم سے کم 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ پراپت رپورٹ کے انوسار فلسطین کے غزہ پٹی کے اتری علاقے جبالیہ میں استھت ایک عمارت میں اچانک لگنے سے ایسی گھٹنا ہے جس نے پورے فلسطین کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे इस्लामी गणतंत्र ईरान में हुए आतंकी हमलों की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की फंडिंग रोके जाने पर एक बयान एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया है। ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। भारत नियंत्रित कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। ये विषय भी राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। ब्रिटेन में नए साल का बजट पेश किया गया है तो नया हंगामा भी शुरू हो गया है। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा का अंतिम विषय यह होगा। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं ईरान में हालिया 3 हफ्तों में हुए आतंकी हमलों की समीक्षा से। इस्लामी गणतंत्र ईरान में पिछले 2 महीनों से हंगामे जारी हैं। इस बीच कुछ आतंकी हमले भी हुए हैं। समीक्षा पेश कर रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
پچھلے 3 ہفتے میں ایران کے 3 شہروں شیراز، اصفہان اور ایزے میں 3 آتنکی حملے ہوئے، جن میں مہیلاؤں اور بچوں سہیت 24 لوگ شہید اور درجنوں گھائل ہو گئے۔ بدھوار کی شام موٹر سائیکل پر سوار آتنکیوں نے کلاشنکوف گن سے خوزستان پرانت کی ایزے کاؤنٹی کے بازار میں عام ناگرکوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 7 لوگ شہید اور 10 گھائل ہو گئے۔ بدھوار کی شام اصفہان نگر میں بھی موٹر سائیکل پر سوار آتنکیوں نے سرکشا کرمیوں پر حملہ کر دیا، جس میں 3 سرکشا کرمی شہید ہو گئے اور 1 گھائل ہو گیا۔ اس سے پہلے گت 26 اکتوبر کو شیراز کے شاہ چراغ مزار پر داعش سے جڑے آتنکی نے موت کا تانڈو کیا اور 2 بچوں سہت 13 لوگوں کی جان لے لی۔ اس حملے میں 30 لوگ گھائل ہوئے۔ ایران میں پچھلے 2 مہینوں سے ہنسک ہنگامے چل رہے ہیں۔ کئی ودیشی ایجنسیوں سے سپورٹ پانے والے دنگائی پورے ایران میں دنگے اور ہنسا پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان دنگائیوں کو امریکہ، کناڈا، یورپی دیشوں، کچھ عرب سرکاروں اور اسرائیل کا سمرتھن حاصل ہے۔ ایران کے خلاف سکری آتنکی سنگٹھن بھی اس اپرادھک پرکرن میں پوری طرح شامل ہیں۔ یہ سارے ہنگامے ایران پر کمر توڑ دباؤ ڈالنے کی یوجنا کا حصہ ہے، جسے 2018 میں امریکہ کی ٹرمپ سرکار نے شروع کیا تھا اور جس کا لکش ایرانی جنتا کو دیش کی اسلامی شاسن ویوستھا کے خلاف بغاوت پر مجبور کرنا ہے۔ اس سمے بس یہ فرق ہوا ہے کہ دنگے کرنے کا بہانہ بدل گیا ہے۔ پہلے آرتھک مدوں کو بہانہ بنایا جاتا تھا اور اب ساماجک اور سانسکرتک مدوں کو ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ 2 مہینے گزر چکے ہیں مگر ایران کو دنگوں کی آگ میں جھونک دینے کی سازش ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ ان یوجنا بند دنگوں کے نتیجے میں گنتی کے کچھ لوگ سڑکوں پر نکل کر نعرے بازی کرنے لگتے ہیں، لیکن دیش کی جنتا بڑی سوجھ بوجھ سے دشمن کی سازشوں کا جائزہ لے رہی ہے اور عام ناگرکوں نے خود کو دنگائیوں سے الگ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سازش میں لپت باہری طاقتیں اور آتنکی سنگٹھن اب آتنکی حملے کروانے پر تل گئے ہیں۔ دنگائیوں کا سمرتھن کرنے والی طاقتوں کی مدد سے چلنے والے ٹی وی چینل بڑی محنت سے لگے ہوئے تھے کہ پورے ایران میں عام ہڑتال ہو جائے اور کاروبار بند ہو جائے، مگر ان کی کال پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ اس سے تلملائے دنگائیوں نے آگزنی شروع کر دی۔ کچھ دکانداروں نے آگ کی چپیٹ میں آنے سے اپنی دکانوں اور کاروبار کو بچانے کے لیے دنگے کے سمے اپنی دکانیں بند کر دی، مگر اس کے علاوہ پورے دن دکانیں کھلی رہیں، تو اس طرح دشمن کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ بار بار سازش ناکام ہونے کے بعد اب دشمنوں نے آتنکی حملوں کا سہارا لیا ہے تاکہ دیش کے بھیتر جھڑپیں شروع ہو جائیں۔ آتنکی حملوں کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایران کے الگ الگ علاقوں میں ابھی اور کچھ مدت تک ہنسا کا ماحول رہے، اسی وجہ سے بچوں اور مہیلاؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے جذبات اور زیادہ بڑھ گئیں۔ دوسری طرف قطر میں فٹ بال وشو کپ پرتیوگتا بھی نزدیک آ گئی ہے، تو دشمنوں اور دنگائیوں کی کوشش یہ ہے کہ ایران کی ٹیم پر منوویگینک دباؤ بڑھے اور وشو سمدائے ایران پر دباؤ بڑھانے کی دشا میں قدم اٹھائے۔ آتنکی حملے شروع کروانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دیش کا ہر علاقہ اشانتی میں الجھ جائے۔
भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसे संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की फंडिंग रोके जाने पर जोर दिया है। ब्यूरो के साथ हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
नो मनी फॉर टेरर नामक संगठन का मंत्रिस्तरीय 2 दिवसीय तीसरा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें भारत सहित 73 देशों के 450 प्रतिनिधि और बहुपक्षीय संगठनों और वित्तीय कार्यबल प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक व्यापक, सक्रिय और व्यवस्थित प्रतिक्रिया की जरूरत है।
इट नोज नो बाउंड्रीज, ओनली ए यूनिफॉर्म यूनिफाइड and zero tolerance approach can defeat terrorism.
उन्होंने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, तो हमें आतंकवाद को अपने घरों में आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आतंकवाद की वित्तीय सहायता पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद को पूरी मानवता पर हमला बताया। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीतियों के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं और उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगस्त 2021 के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है और सत्ता परिवर्तन, अलकायदा और ISIS का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरा है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
भारत नियंत्रित कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्त मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित कश्मीर के सबसे बड़े मेन स्ट्रीम दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। अब नए अध्यक्ष का चुनाव आने वाले महीने की 5 तारीख को होगा। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला को अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु एक प्रक्रिया के अनुसार एक बार फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कई वर्षों तक इस पद पर विराजमान रहने के बाद उन्होंने एक बार फिर त्याग पत्र दे दिया है और बताया जाता है कि पार्टी हेडक्वार्टर पर 5 दिसंबर को एक बैठक होगी, जिसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव अमल में लाया जाएगा। अभी तक किसी ने भी नाम आंकर पत्र नहीं भरा है, परंतु अटकलें लगाई जा रही है कि उमर अब्दुल्ला ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए अध्यक्ष होंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक प्रक्रिया आरम्भ की है, जिसके अनुसार वो उन तमाम लोगों को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जो जेलों में बंद हैं।
मुझे लगता सबसे पहला उन्हीं के लिए हम लड़ेंगे जिनके कोई वसाइल नहीं है, जो अदालत तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिनके घर में कोई उस किस्म का वाली नहीं है जो कहीं पहुंच सके। हमने वैसे पॉलिटिकल पार्टी के दरवाज़ा खोला है और शायद पहली पॉलिटिकल पार्टी है कि हम उन लोगों की सहायता करेंगे, चाहे हमें अदालत जाने पड़े, चाहे हमें हुकाम के पास जाना पड़े, लेकिन ये गरीब और मासूम आवाम के लिए और जिनका कोई नहीं है देख रेख करने वाला, उनके लिए हमने ये आवाज़ आज खड़ी कर दी।
सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ब्रिटेन में नए साल का बजट पेश किया गया है, जिससे इस देश की आर्थिक कठिनाइयां और संकट साफ झलक रहे हैं। IRIB के संवाददाता मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रविश जैदी।
ब्रिटेन की नई सरकार ने नए वित्तीय साल के बजट को पेश करते हुए ऐलान कर दिया है कि वह अपने खर्चों में से 30 अरब पाउंड कम करने पर मजबूर है, जबकि दूसरी तरफ 25 अरब पाउंड का रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने कहा कि अन्य देशों की तरह ब्रिटेन को भी मंदी का सामना है और हम कठिन फैसले लेने और टैक्स बढ़ाने पर मजबूर हैं। ब्रिटेन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स संस्थान ने जहां एक तरफ ऐलान किया है कि पिछले 41 साल में आज इन्फ्लेशन की स्थिति सबसे खराब है, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि आर्थिक परेशानियों की वजह रूस है। ऋषि सुनक का कहना था कि रूस ने दुनिया में खाद्यान्न और ऊर्जा के बाजार को उथल पुथल में डाल दिया है। यूक्रेन जंग के बुरे आर्थिक प्रभाव कई वर्षों तक अन्य देशों को परेशान करते रहेंगे। संसद की इस बैठक में अन्य पार्टियों के नेताओं ने अलग विचार व्यक्त किए। लेबर पार्टी की सांसद राचेल रिवेस ने कहा कि ये दुर्दशा सरकार की नीतियों के चलते हुई है और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। वर्ष 2022 समाप्त होने जा रहा है, एक साल के भीतर 3 प्रधानमंत्री और 4 वित्त मंत्री बदले हैं। हमारी हालत साल की शुरुआत से अब और भी खराब हो गई है। इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर है और जीवन स्तर गिर गया है। सरकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाली आम जनता में बहुत से लोगों का मानना है कि इस संकट की जड़ देश के भीतर है। प्रदर्शनकारी ने कहा कि देश की संचालन व्यवस्था बंद गली में पहुंच गई है। हमारे पास आज वो प्रधानमंत्री है जिसे जनता ने नहीं चुना, बल्कि पार्टी के प्रतिनिधियों ने चुना है। करेंसी की वैल्यू गिर गई है, इकोनॉमी चौपट हो गई है और आम नागरिकों का जीवन दुश्वार हो गया है। सरकार की नीतियों के नतीजे में गरीबों का पैसा धनवानों की जेब में जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि आने वाले साल में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की विकास दर -1.4% रहने की संभावना है, इसीलिए सरकार 140 अरब पाउंड का कर्ज लेने पर मजबूर होगी। रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने 12 साल पहले से आर्थिक कटौती की जो नीतियां अपना रखी हैं, उनको अब और कठोरता से लागू किया जाएगा, मगर इसका नतीजा ये होगा कि आम नागरिकों पर दबाव और बढ़ जाएगा जो पहले ही बहुत ज्यादा है। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. شروتاؤ اب پرستت ہے آپ کا من پسند کاریہم پاتر سنسار.
पत्र संसार.
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है. अपने भैया रविश और दीदी मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए.
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मन पसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे.
बिल्कुल, इस आशा के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे कि आप जो है वो हमारे कार्यक्रम को, यानी आप अपने कार्यक्रम को इस वक्त ध्यानपूर्वक जो है वो सुन रहे होंगे. और ये भी उम्मीद है कि इस आज का कार्यक्रम आपको ज़्यादा पसंद आएगा. वैसे हमेशा दूसरे कार्यक्रम भी जो है दीदी हमारे श्रोताओं को पसंद आते हैं और उनके जो संदेश आते हैं, उनके जो पत्र आते हैं, उससे हमें ये मालूम होता है कि वो हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं. बस एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे जो हमेशा कहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय जो है वो ज़रूर दिया कीजिए और कुछ भी इसमें बदलाव की आपको लगता है कि आवश्यकता है और बेहतर बना सकते हैं जहां तक हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो उससे भी हमें अवगत करवाते रहा कीजिए.
हाँ, तो शुरू करें भैया.
बिल्कुल दीदी.
आनंद मोहन बैन का ये ईमेल है, लिखते हैं कि हाँ, परिवार बंधु श्रोता संघ से इन्होंने लिखा है. लिखते हैं कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारा क्लब विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है. हम फूलमाला बैन मेमोरी क्विज, सूतपा बैन मेमोरी क्विज का आयोजन किया है. इस वर्ष अब तक हमने 11 प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं. कुल मिलाकर हमने 161 लोगों को उपहार दिए हैं और उपहार के रूप में हमने टी शर्ट्स, रेडियो, घड़ियाँ, पावर बैग, रुमाल, मोबाइल, नोटबुक, पेन विभिन्न रेडियो स्टेशन से प्राप्त उपहार दिए हैं. और इस ईमेल के साथ हमारे क्लब को ये सूचना भेजी जा रही है, अगर इसे कार्यक्रम में पढ़ा गया तो हमें बहुत खुशी होगी और श्रोताओं को हमारे कार्यकलाप के बारे में जानकारी मिलेगी.
इस बात में दीदी कोई संदेह नहीं है कि आनंद मोहन बैन जी जैसे लोग अगर कोई किसी रेडियो के साथ जुड़ जाए तो वो उस रेडियो का भाग जो है पूरी तरह से बदल सकता है. उसका एक कारण है वो ये कि ये पूरी श्रद्धा के साथ उससे जुड़ते हैं. ये केवल रेडियो तेहरान के साथ नहीं जुड़े हैं. मैं जहां तक इनको जानता हूँ बहुत सारे रेडियो तेहरान के, बंगला के और उर्दू से सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इनकी श्रद्धा है हर किसी के साथ और जो रेडियो के सुनने वाले हैं श्रोताओं उनके साथ जिस तरह से इनका जुड़ाव है, जिस तरह की ये प्रतियोगिताएं जो है आयोजित करते हैं, जिस तरह से उपहार देते हैं, बहुत ही सराहनीय है. और ये भी हम आपसे वादा करते हैं कि हम भी आपके साथ जो है वो शामिल होंगे और बहुत ही जल्द जो है वो कोई प्रतियोगिता जो है हम भी आरम्भ करेंगे और उसमें आपके लिए जो है दीदी की तरफ से उपहार होगा.
ये तो आप अपनी तरफ से आपने कह दिया, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अपनी पत्नी फूलमाला बैन और अपनी बेटी सुतपा बैन के मेमोरी में जो क्विज किया था वो बहुत ही सराहनीय था.
बहुत ही सराहनीय कार्य है और इस आशा के साथ हम जो है आपकी पत्नी और आपके बच्चों के लिए भी जो है वो दिल से, हृदय की गहराइयों से मनोकामना करते हैं कि उनका जो है भविष्य जो है उज्ज्वल रहे और हमेशा जो है वो
जी पत्नी का तो स्वर्गवास हो गया है,
उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले और बच्चों का जो है वो भविष्य हमेशा उज्जवल रहे.
जी बिल्कुल सही कहा आपने.
तो दोस्तों,
اب تک ہمیں اس امید یہ امید ہے کہ آپ کو ابھی تک کا ہمارا سفر جو ہے اچھا لگا ہوگا، ہماری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، کچھ زیادہ ہم نے بول دیا ہو تو اس کے لیے کھما چاہتے ہیں، اس لیے دیدی اپنی بڑی بڑی آنکھیں مجھے دکھا رہی ہیں، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دیدی کے پٹارے میں وہ بھی سانسکرتک پٹارے میں آج کیا ہے۔ ویسے دیدی ہمیشہ ہم کو بھوکا رکھتی ہیں تو آج بھی ہم کو
پچھلی بار آپ کو سواتی نے اچھے سے انہوں نے
کھانا کھلایا تھا، لیکن آج ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ ٹہلا کے وہ کھانا ہضم کرو۔
آج ہم آپ کے جو پھٹے پرانے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے رفو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں،
بتائیے ہم بھی رفو کروا لیں گے۔
اسے ڈارننگ کہتے ہیں یا رفو، تو یہ ایران میں ایک پارمپرک اور پرانی کلا ہے اس کی، جو قالین بنائی کی کلا کے ساتھ ساتھ استتو میں آئی، اور یہ ایک ایسا کوشل ہے جو ایک پرانے قالین کو پھر سے سندر بنا سکتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کپڑے پھٹے پرانے نہیں، یہ قالین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
بالکل دیدی، لیکن اس بیچ میں ایک بات آپ سے ضرور کہتا چلوں کہ آج کل کے زمانے میں جو ہے لوگ پھٹے پھٹے کپڑے پہننے ہیں، ان کو رفو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ان کو پھاڑنے
کی ضرورت ہے۔ جی آگے کی جو خبر ہے یہ ہے، ایک مہنگا قالین شتیگرست ہو جاتا ہے اور مرمت کی آوشکتا ہوتی ہے تو ڈارننگ یا رفو کا مولیہ سپشٹ ہو جاتا ہے، اور جلنے اور پھٹنے یا کپڑے کے جرجر ہونے سے قالین خراب ہو سکتی ہے۔ ایک قالین کو اس طرح کے نقصان کی مرمت ایک ڈرنر یا رفو کرنے والا ہی کرتا ہے۔ تہران کے بھیڑ بھاڑ والے بازار کے بیچ میں ہال یا تمچے ہیں جہاں اجیات کلاکار ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں کے رفو میں اتکرشٹ کام کرتے ہیں۔ استاد جو مہنگے اور مولیوان قالینوں کے ساتھ رفو کرتے ہیں اور انہیں سندر بنا دیتے ہیں۔ ایران میں رفو کا اتہاس ایسا ہے، رفنگ کا شلپ ایک ساتھ قالین بنائی کے روپ میں پیدا ہوا تھا، لیکن اتہاس کی کتابوں میں شلپ کا کوئی شبد نہیں ہے، پھر بھی یہ اس شلپ کے مادھیم سے ہے کہ ترچھی ریکھاؤں اور پھٹنے سے ہونے والی کھتی کی مرمت کی جاتی ہے۔ ایک ڈرنر کا کرتویہ ایک قالین کو اتنا پریپورن بنانا ہے کہ وہ خریداروں کو پرستت کیا جا سکے۔ آج مانو سماج میں پرگتی کے ساتھ رگ ڈارنگ کا شلپ بھی کافی انت ہو گیا ہے اور ایک وشیش اور کٹھن کاریہ اور ایک کلا کے روپ میں بدل گیا ہے۔ بے شک چھوٹی موٹی مرمت جیسے کہ لمبے مارجن کی سلائی کرنا، جڑوں کو بننا اور قالین کے کناروں کو ٹریم کرنا گھر پر ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن قالین پر جھریوں کو ہٹانے جیسے کام کیول پیشور ڈارنر ہی کر سکتے ہیں۔
بالکل، اس میں کوئی سندیہ نہیں ہے، لیکن دیدی جیسا میں نے کہا، بہرحال یہ ایک بہت ہی باریک کلا ہے
جی،
اور بہت ہی یعنی اچھی کلا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بہت زیادہ اس کا یعنی پریوگ ہوتا تھا، لیکن اب
ابھی زمانے بھی ضرورت ہے کیونکہ قالین اتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ بالکل دیدی،
قالین کے لیے ہے، قالین وغیرہ دوسروں کاریوں کے لیے ہے، اس طرح کے کاموں کے لیے، لیکن جو پہلے رفو کپڑوں میں بھی ہوتا تھا وہ اب بہت دھیرے دھیرے کم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی کلا ہے اور اس کلا کا باقی رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ساتھیوں چلتے ہیں دیدی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ آج کن کن خبروں پر کیا کیا کمنٹس ہوئے ہیں۔
جی، اتری کوریا کی امریکہ کو کھلی چیتاونی، اس پر یحیٰ لکھتے ہیں، یدھ کو پربھاوت کرنے والے امریکہ کے پاگلپن اور اس کے قبضے والے دکشن کوریا کے چھوٹے چھوٹے اور چھوٹے سلیو شکتیشالی اتر کوریا کو غصے میں پرتکریا کرنے کا کارن بنتے ہیں، اور کروت بل کو ان توپ خانوں کو دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ آجیون پریدرشیہ ہے جو انشچت کال تک جاری رہے گا جب تک دکشن کوریا مکت نہیں ہو جاتا۔
بالکل صحیح بات کی ہے یحییٰ جی، مجھے تو اس بات پر بہت ہی آشچریہ ہوتا ہے کہ دنیا اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ کہیں بھی جاتا ہے وہ یدھ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے
جی،
جبکہ بہت ساری چیزوں کے سمادھان، بلکہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر چیزوں کا سمادھان وارتا کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ وارتا کم ان یعنی دیشوں کو بھڑکانے میں لگا رہتا ہے، ان کو ہتھیار پہنچانے میں لگا رہتا ہے، تو ایک عجیب سی یعنی سچویشن ہے جس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ دنیا کو ہر دیش کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ سمادھان یدھ نہیں ہے۔
جی، پرگتی کی اور ایک کے بعد دوسرا قدم بڑھاتا ایران، سیاد 4B میزائل کیا لانچ، اس پر عباس لکھتے ہیں، ईरानी वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविदों द्वारा एक बड़ी उपलब्धि। ईरान को अपना वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति और उन्नति जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ईरान के लिए सभी पश्चिमी ज़ायनी और वहावी खतरों को मिटाने का यही एकमात्र तरीका है।
अब्बास जी, बहुत ही सही बात कही है आपने, और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि इतने कड़े प्रतिबंधों के बाद जिसने अमेरिका ने और कुछ यूरोपीय देशों ने हर तरह के प्रयास के बाद, आप ये देखिए कि ईरान जो सरकार है, यहाँ की जो हुकूमत है, वो किसने दबाव के बाद और कितनी तरक्की कर रही है, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है। और ये बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई भी इनकी होनी चाहिए, और ये आशा भी है कि आने वाले दिनों में भी, आने वाले समय में भी ईरान इसी तरह प्रगतियों की जो है वो तरफ बढ़ता रहेगा और तरक्की की जो का आसमान जो है वो छूता रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं दीदी के पास। दीदी जो है वो आज किसी प्रिय श्रोता का एक, यानी जो हमारे लिए वो विचार भेजते हैं, अपनी दिल की बातें, मन की बातें करते हैं। तो दीदी बताएंगे कि आज जो है वो किसने अपने मन की बातें हमसे की हैं और दूसरों के लिए के साथ हम शेयर करें उसको।
जी, ये है हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता, लेकिन कहाँ से है ये इन्होंने नहीं बोला है, तो ये है साजिद मुजावर। चलते हैं, इनके विचार सुनते हैं।
हिंदी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से मैं नियमित हिंदी कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। कार्यक्रम बहुत बेहतर होते हैं। मैं रात का कार्यक्रम भी सुनता हूँ। वैसे मेरा ताल्लुकात, चूंकि मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो आपके यहाँ से जो राजनीतिक चर्चा होता है वो मैं बहुत चाप से सुनता हूँ, बहुत गौर से सुनता हूँ। वैसे आपके जितने भी कार्यक्रम है सब बेहतर है। ईरान के बारे में जो बताया जाता है, ईरान के मुख्तलिफ शहरों के बारे में बताया जाता है, वो कार्यक्रम बहुत ही मालूमाती और ज्ञानवर्धक होते हैं। और खास करके चूंकि हम लोग बचपन में फारसी पढ़ने का मौका मिला, वैसे जब कॉलेज में गया तो फारसी से उतना लगाव नहीं था, मगर हाई स्कूल तक फारसी पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद उस जुबान से कोई ताल्लुकात नहीं था, मगर रेडियो तेहरान सुनने के बाद एक शौक पैदा हुआ, और आपके यहाँ से कार्यक्रम में भी फारसी सिखाने का जो कार्यक्रम होता है वो बहुत ही बेहतर है। और श्रोताओं के पत्रों से संबंधित जो कार्यक्रम है वो तो सारे श्रोताओं के लिए बेहतर है, तो मैं भी उसको बहुत चाप से सुनता हूँ, क्योंकि इसमें श्रोताओं के कमेंट सजेशन सुनने को मिलता है, तो प्रोग्राम कैसा है या उसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए, तो इस कार्यक्रम को मैं बराबर सुनता हूँ। इधर बहुत दिनों से मैं पत्र नहीं लिख पाया हूँ, मगर कार्यक्रम सुन लेता हूँ, और वैसे सारे कार्यक्रम अच्छे हैं आपके।
तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रिय श्रोता साजिद मुजावर साहब। और ये बात, मैं एक बात दीदी कहना चाहूँगा अपने तमाम श्रोताओं से कि जैसे आप अपने विचार भेजते हैं तो अपने कहाँ से हैं आप, ये जरूर हमें बता दिया कीजिए, ताकि हमारे
कभी हो जाता है
वही कि हमारे सुनने वाले ये चाहते हैं कि वो जाने के कहाँ का श्रोता हो, क्या बात कर रहा है। दीदी, हमारे पास बहुत कम समय है, तो जल्दी से एड्रेस बता दें तो।
जी बिल्कुल, बता देते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir, और हमारी वेबसाइट का पता तो इन लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। पता है parstoday.com/hi, और व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 00989035065492।
और हमारी जो खबरें हैं उनको आप अगर चाहते हैं कि अपडेट रहें, उन खबरों को पढ़ते रहें, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें आप ऐड हुइए, और हर एक घंटे में, दो घंटे में आपको एक नई खबर पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। तो हमारे साथ संपर्क बनाए रहे इस आशा के साथ। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए दीदी, हम जो है यानी अपने भैया रविश और दीदी मरियम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتو ابھی آپ نے سنا اپنا من پسند کاریکرم پتر سنسار، اور اب پرستت ہے سبھا کا انتیم اور ساپتاہک کاریکرم وگیان کی ڈگر۔
وگیان کی ڈگر۔
दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम ईरान और दुनिया में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति के विषय पर चर्चा करेंगे। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार करें।
दोस्तों, वर्ल्ड इस्लामिक साइंस साइटेशन डेटाबेस ISC के प्रमुख के अनुसार स्कोपस इंटरनेशनल डेटाबेस के अनुसार 1997 से 2017 के अंत तक पिछले दो दशकों में फारसी में वैज्ञानिक दस्तावेजों के प्रकाशन में 40 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, और इसके साथ फारसी भाषा की विश्व रैंकिंग का पायदान 15 बढ़ा है, और इस तरह से 30वें से वे 15 स्थान पर पहुंच गई है। ISC के प्रमुख के अनुसार 1997 से 2000 की अवधि में स्कोपस डेटाबेस में फारसी में दस्तावेजों को दर्ज नहीं किया गया था।
वास्तव में 2001 से फारसी इस डेटाबेस में विज्ञान की भाषा के रूप में उभरी है, और 2001 में फारसी में 42 दस्तावेजों को अनुक्रमित किया गया है। इन वर्षों के दौरान इस भाषा की बढ़ती प्रवृत्ति जारी रही है, और 2012 से इन दस्तावेजों की संख्या 1000 से अधिक तक पहुंच गई है।
वर्तमान समय में 2017 में फारसी में अनुक्रमित दस्तावेजों की संख्या बढ़कर 1834 दस्तावेज हो गई है। पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या की तुलना से पता चलता है कि उल्लेखित अवधि में फारसी प्रकाशनों की संख्या में 40 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इसीलिए पिछले दो दशकों में फारसी में विज्ञान उत्पादन की मात्रा में औसतन वार्षिक वृद्धि दर 25% के बराबर रही है।
हमादान में बू अली सीना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गर्भाशय कैंसर कोशिकाओं को स्मार्ट दवा वितरण के लिए नैनो कैरियर विकसित किया है। आज दुनिया के लोगों में कैंसर के प्रसार और इस बीमारी से निपटने के व्यापक प्रयासों के कारण शोधकर्ताओं के प्रयास है कि कैंसर रोधी दवाओं के साइड इफेक्ट्स कम किया जाए, और साथ ही इन दवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाया जाए। इस क्षेत्र में की गई सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक दवा वितरण के लिए स्मार्ट नैनो कैरियर्स की डिजाइन है, ताकि नियंत्रित दवाओं को टारगेटेड उत्तकों में छोड़ा जा सके।
इस परियोजना के शोधकर्ताओं के अनुसार, चूंकि गर्भाशय का कैंसर सबसे घातक कैंसरों में से एक है, इस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई दवाओं के बड़े साइड इफेक्ट्स के कारण इस प्रयोगशाला अनुसंधान में नैनो कैरियर्स में दवा नोरपाइन संश्लेषण अर्थात संयोजन शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भाशय कैंसर कोशिकाओं के विकास और उसके विस्तार को रोकना है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं के अनुसार चिटोसन के साथ काम करने वाले चुंबकीय नैनो कणों का उपयोग नैनो कैरियर्स को संश्लेषित करने और गर्भाशय कैंसर कोशिकाओं यानी हेला को न्यूरोपाइन दवा देने के साथ कैंसर कोशिकाओं को मारने को बढ़ाने के लिए इस दवा को धीमी गति से रिलीज करने के लिए किया गया था।
यद्यपि ये कण सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले नैनो मटेरियल्स में से एक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन बायोमेडिसिन और विशेष रूप से दवा वितरण के क्षेत्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। वास्तव में इस दवा से लक्ष्यकरण गुणों के इलाज में सुविधा मिलती है, और उच्च शक्ति के साथ एकाग्रता और वांछित स्थान पर नैनो कणों के माध्यम से दवा वितरित की जाती है।
इस दवा के उपयोग से चुंबकीय धातु नैनोकणों के लिए वांछित और स्थिर जैव चिकित्सा गुण भी प्रदान किए जाते हैं और इससे कोशिकाओं या जैविक प्रोटीन पर इन नैनोकणों के जहरीले प्रभाव को रोका जा सकता है। इससे ऐसे नैनोकणों की अनुकूलता और स्थायित्व में वृद्धि होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि नॉरपेनिफ्रिन युक्त नैनोकणों का दवा की तुलना में हेला कैंसर कोशिकाओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। 2018 में इस शोध के परिणाम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं।
दोस्तों, आइए गर्भाशय कैंसर के बारे में संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। गर्भाशय या एंडोमेट्रियल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय में शुरू होता है। गर्भाशय एक खोखला नाशपाती के आकार का श्रोणी अंग है जहां भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय का कैंसर उन कोशिकाओं में शुरू होता है जो गर्भाशय की आंतरिक परत बनाती है। एंडोमेट्रियल कैंसर को कभी कभी गर्भाशय कैंसर कहा जाता है। अन्य प्रकार के कैंसर गर्भाशय में बन सकते हैं जिसमें गर्भाशय सार्कोमा भी शामिल है, लेकिन वे एंडोमेट्रियल कैंसर से कम आम हैं।
एंडोमेट्रियल या गर्भाशय कैंसर का अक्सर प्रारंभिक चरण में निदान किया जा सकता है क्योंकि ये असामान्य योनि रक्त स्राव का कारण बनता है। यदि एंडोमेट्रियल कैंसर का जल्दी पता चल जाता है तो गर्भाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने से इस कैंसर का इलाज हो सकता है। यदि गर्भाशय के कैंसर का इलाज नहीं किया जाता तो इसके मूत्राशय, मलाशय, योनि और अंडाशय आदि में फैलने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भाशय कैंसर यानी यूटेराइन कैंसर विश्व भर की महिलाओं में होने वाले कैंसरों में से एक सबसे महत्वपूर्ण है।
यदि भारत की बात की जाए, हर साल 12,000 से अधिक महिलाओं में इस कैंसर के मामले देखने को मिलते हैं, जिनमें से आधी महिलाओं अर्थात लगभग 6,000 महिलाओं की मौत इसकी वजह से हो जाती है। ऐसा मुख्य रूप से गर्भाशय कैंसर की जानकारी की कमी की वजह से होता है। यदि उन्हें इस कैंसर की जानकारी होती तो शायद वे समय रहते कैंसर सर्जरी करा पाती और ऊपर दिए गए आंकड़े कुछ कम होते।
दोस्तों, ईरानी शोधकर्ताओं ने पानी से नाइट्रेट को हटाने के लिए माइक्रोबियल ईंधन कोशिकाओं का डिजाइन और उसका निर्माण भी किया है। परियोजना के अनुसार पीने के पानी में नाइट्रेट एक खतरनाक पदार्थ होता है जो पाचन तंत्र में नाइट्राइट और नाइट्रोसामाइन को कम कर सकता है और पेट के कैंसर का कारण बन सकता है। ये गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शोधकर्ताओं का ख्याल है कि पानी की गुणवत्ता को खराब करना और मनुष्य तथा पशु स्वास्थ्य के लिए विषाक्तता पैदा होना पर्यावरण में इस प्रदूषक के प्रवेश होने के कारण होने वाली समस्याओं का एक हिस्सा शुमार होता है।
इस शोधकर्ता के अनुसार चूंकि नाइट्रेट घोल के रूप में पानी में मौजूद होते हैं, इसलिए पारंपरिक और सामान्य जल फिल्टर विधियां इसे दूर नहीं कर सकती हैं और इन सभी विधियों में नाइट्रेट को केवल पानी से अलग किया जाता है। माइक्रोबियल ईंधन सेल यानी MFC में पानी से नाइट्रेट हटाना, नाइट्रेट को आणविक नाइट्रोजन में जैविक रूप से कम करने के लिए नाइट्रेट युक्त पानी को फिल्टर करना, इस शैली की एक नई तकनीक है जिस पर इस शोध में अध्ययन किया गया है।
दोस्तों, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के संस्थापक ने घोषणा की थी कि वो कुछ हफ्तों में पहली बार अंतरिक्ष में एक रॉकेट लॉन्च करेगा जिसके तुरंत बाद ही वो पृथ्वी की कक्षा में व्यावसायिक यात्रा करेंगे। अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी द्वारा लॉन्च किए जाने के तुरंत बाद ही यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में ले जाया जाएगा। अंतरिक्ष पर्यटक यात्रा करने के लिए इस संस्था के निदेशक स्पेस एक्स और अमेजन के बीच पहली बार कड़ी टक्कर हुई। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी पर्यटकों की हर यात्रा पर हर यात्री से $2,50,000 चार्ज करती है। कंपनी ने पहले घोषणा की कि वह 2019 में यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगी। 2004 में स्थापित होने वाली वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी का उद्देश्य सभी के लिए अल्पकालिक व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्रा की सुविधा प्रदान करना है।
इस कंपनी के साथ अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पर्यटक शून्य गुरुत्वाकर्षण पर कुछ मिनट बिता सकते हैं। उन्हें ले जाने वाले अंतरिक्ष यान कर्मन रेखा को पार करता है। यह रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष की सीमा है। कर्मन रेखा को क्रेमन, कार्मन या कार्मन वगैरह भी कहा जाता है।
एक सवाल जो वैज्ञानिकों और आम लोगों ने हमेशा खुद से पूछा है वो ये है कि क्या वातावरण और बाहरी अंतरिक्ष के बीच एक कैंची की सीमा है, उसे क्या कहते हैं। ये ज्ञात है कि वायुमंडल पतले और पतले जैसे होते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से ऊंचाई तक पहुंचता है जब तक ये गायब नहीं हो जाता। हालांकि एक वायुमंडलीय सीमा है जो वैमानिक उद्देश्यों के लिए मौलिक है। क्रेमन लाइन इस वायुमंडलीय सीमा के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विज्ञान की डगर और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। तेहरान के केंद्रीय नमाज जुमा के अस्थायी इमाम ने कहा है कि लोगों का खून बहाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। रूस ने ईरान, चीन और तुर्की से सहयोग को महत्वपूर्ण बताया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद मानवता पर हमला है। पाकिस्तान में 12 बच्चों सहित 20 लोगों की मौत हो गई। तुर्की के राष्ट्रपति ने सीरिया के साथ संबंधों के सामान्य बनाए जाने की ओर संकेत करते हुए कहा कि राजनीति में हमेशा द्वेष नहीं रखा जा सकता और तुर्की में जून महीने में होने वाले चुनाव के बाद दमिश्क सरकार के साथ संबंधों को नए सिरे से आरंभ कर सकते हैं। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़। शुभ रात्रि।